ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ज्ञातमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामैहं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुमहिष्णुवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सदीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिताश्विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसृते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयताम सुरतोर्पंग मंदमतेमत्सर्वस्व पदाभोजो राधा मदन मोहनो यम ब्रह्मा वृणेन्द्रुद्रमृतस्वन्वंद दिव्यस्तव वेद सांगपदक्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज श्री श्री लोचननाथ ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, उनके बारे में थोड़ा इधर जानकारी मिला है समाधि ग्रुप में, उनमें से कुछ चर्चा करेंगे। श्री लोचननाथ ठाकुर नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे, और जो नरहरि सरकार श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत गहरे संग में थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है हमको, उनके बारे में तीन ग्रंथ उपलब्ध है। एक है चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित, दूसरा है चैतन्य भागवत, वो है वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है, और चैतन्य मंगल जो लोचनदास ठाकुर ने रचना किया। असल में जब वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत का रचना किया था, वो ग्रंथ का नाम था चैतन्य मंगल। वृंदावन दास ठाकुर सबसे पहला चैतन्य मंगल के नाम के ऊपर उन्होंने रचना किया था, लेकिन बाद में जब लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में और एक ग्रंथ का रचना किया उसी नाम पे, चैतन्य मंगल के नाम पे, वृंदावन दास ठाकुर जो पहले से ही चैतन्य मंगल करके ग्रंथ को रचना किए थे, वो लोचनदास ठाकुर की चैतन्य मंगल को आदर देने के लिए, लोचनदास ठाकुर को सम्मान देने के लिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपने जो ग्रंथ का नाम है चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत करके प्रणीत किया। इसलिए जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वो चैतन्य मंगल करके जब नाम लिखते हैं, या चैतन्य मंगल में इस लीला का और विस्तृत रूप में वर्णन हुआ करके ये समझना चाहिए कि वो चैतन्य मंगल लोचनदास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ चैतन्य मंगल नहीं है, बल्कि वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया चैतन्य मंगल जो बाद में चैतन्य भागवत के रूप में नाम पड़ा उनका। तो ये तीनों ग्रंथों में विशेषता यह है कि चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु की जो संन्यास के पहले वाली लीलाओं का विस्तृत वर्णन है, संन्यास लेने के पहले, इसलिए चैतन्य भागवत का आदि लीला और मध्य लीला ये दोनों वर्णन करता है श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास की पहले की लीलाओं का, और संन्यास की बाद की लीला जो है केवल अंत लीला में वर्णन है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद की लीलाओं का वर्णन है, मध्य लीला और अंत लीला दो लीलाओं में, दो खंडों में चैतन्य महाप्रभु का संन्यास के बाद की लीलाओं का ज्यादा वर्णन है। केवल संन्यास के पहले की कुछ ही लीलाओं का ऐसे जिक्र मात्र करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य भागवत सिद्धांत से ज्यादा लीला का वर्णन है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत का ज्यादा वर्णन है। लेकिन लोचनदास ठाकुर का जो चैतन्य मंगल है ये उतना बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा सा किताब है, करीबन 200 पेज का किताब है, 200-250 पेज का किताब है ये। इसके अंदर लोचनदास ठाकुर ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तृत रूप में नहीं किया है। खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए वो जो लीला है उस समय विष्णुप्रिया के साथ उन्होंने जो चर्चा किया, चैतन्य महाप्रभु और विष्णुप्रिया का जो संवाद है वो संवाद को बहुत विस्तृत रूप में लिखे, और कभी कभी एक ही लीला को दोनों ने वर्णन किया थोड़ा सा अलग अलग तरीके से, तो उसमें कोई दोष माना नहीं जाता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार अपनी लीलाओं को दर्शाते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। लेकिन इसका चैतन्य मंगल का खासियत यह है, विशेषता यह है कि ये बहुत सुंदर पद्य रूप में है, गीत के रूप में है, क्योंकि लोचनदास ठाकुर स्वयं वो बहुत सुंदर संगीतकार थे, बहुत सुंदर संगीत गाते थे। जिस प्रकार रामायण और महाभारत लोकप्रिय है अन्य भारत के अन्य जगह पे, और हर जगह रामायण की चौपाइयां यूपी बिहार में जिस प्रकार गाते हैं, उसी प्रकार बंगाल के हर एक घर में या इवन पश्चिमी बंगाल हो या पूर्वी बंगाल, दोनों बंगाल में लोचनदास ठाकुर का चैतन्य मंगल को वैसे घर में माताएं या ऐसे लोकप्रिय, इतना लोकप्रिय है कि ऐसे गाते थे लोग, हर चीज में इन चैतन्य मंगल की गीतों को गाना इस प्रकार चलता था। तो भले वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत है, लेकिन लोचनदास ठाकुर का चैतन्य मंगल और लोकप्रिय है, ये बात हमको मालूम पड़ता है। खास करके लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल के साथ साथ उन्होंने और बहुत सारे गीतों का रचना किया है। ये गीतों में एक प्रसिद्ध गीत है परमा करुणा पाऊ दुई जना, ये बहुत प्रसिद्ध गीत है। और श्री प्रभुपाद जी एक बार इस गीत को गाते थे तो एकदम चैतन्य प्रेम को आस्वादन करते हुए वो भाव प्रकट किए, एकदम तुरंत बंद हो गया, उनकी आंखों में आंसू भी आ गया था एक बार। तो उसके अंदर परम करुण पाउ दुई जना वो गीत में आता है, भजो भजो बाय चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। तो लोचनदास ठाकुर ये भजो भजो भाई, आप भजो सभी भाइयों आप भजो, जिनको ये चैतन्य निताय श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को भजो पूरा दृढ़ता और विश्वास के साथ। और ये भी आश्वासन देते हैं कि आप ये मत सोचो कि आप जप कर रहे हैं तो ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं होगा, इतना विश्वास रख के आप इस हरे कृष्ण नाम से जप करो कि कृष्ण प्रेम जरूर एक दिन प्राप्त होगा। तो ये लोचनदास ठाकुर के बारे में थोड़ा सा परिचय है। कभी कभी मौका मिलता है तो आप सबको ये चैतन्य मंगल कोई पढ़ना होगा, अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी हुआ है, हिंदी में तो है ही, तो आप जब भी एक इतना ही बड़ा किताब जैसा है, काला सा रंग का किताब है चैतन्य मंगल, इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश, रीड दैट। उसके अंदर ऐसे कुछ प्रार्थनाएं, और मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ बाल लीलाओं के कुछ अंश पढ़े थे, वो बहुत स्वीटली प्रेजेंट करते हैं वो लीलाओं को, बहुत शॉर्ट और स्वीट में, और खास करके जब कन्वर्सेशन आता है वो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं, वेरी नाइस बुक। श्री वचननाथ ठाकुर की जय। चलो अभी आज आखिरी दिन है लेमन सिंह वृंदावन, बहुत सारे असुरों को तो वध किए भी अभी तक। तो छह असुर बाकी है, इनका लीला विस्तृत रूप में वर्णन नहीं है भागवत में भी, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट लीलाएं, भगवान ने किस प्रकार नंद महाराज को अरुण देव से बचाया, बाद में नंद महाराज को एक बड़ा सांप से बचाया, और शंकासुर का वध, बाद में अरिष्टासुर का वध, केसी का वध और व्योमासुर का वध, यानी इतने लीला, इतने असुरों को श्री कृष्ण ने वध किया। नंद महाराज, आप सबको मालूम है एकादशी तो उपवास होता है, एकादशी उपवास करने के बाद नंद महाराज अगला दिन द्वादशी का व्रत तोड़ने के लिए वो सुबह निकल पड़े और नहाने के लिए गए। ऐसा नहाने का जो समय होता है उसका कुछ निश्चित समय होता है, यमुना में या कोई नदी में कोई भी अपने मनमानी समय में नहीं नहा सकते, एकदम सुबह एकदम जल्दी उठना मतलब क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके पहले अगर कोई करता वो रात माना जाता है, रात के समय नदी में नहीं नहाना चाहिए। ऐसे सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के बाद दो चीजों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, एक है जलाशय जो तालाब वगैरह होते हैं उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो भी रेस्ट देते, वो भी सोते हैं। दूसरा पेड़ पौधों के को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फूल निकालना, इवन तुलसी को भी हमको संध्या के बाद यानी सूर्यास्त के बाद हमको तुलसी का पत्ता भी निकालना नहीं चाहिए। तो ऐसे नदी और वृक्ष इस प्रकार की बात कहा जाता है। तो यमुना नदी में जाके नंद महाराज जो है उनको थोड़ा जल्दी उठ गए थे, जल्दी उठ के जाके यमुना में नहा लिए, और जल का अधिष्ठान देव होते वरुण, और वरुण के बहुत सारे अनुचर है, उन्होंने देखा ये नंद महाराज ने क्या किया, जो गलत समय में जो असुरी समय में जाके उन्होंने नहा लिया, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नंद महाराज को बंदी बना लिए। नंद महाराज को बंदी बना के वरुण देव के पास लेके गए, जब कृष्ण को जैसे मालूम पड़ा वरुण देव के पास लेके गए, कृष्ण और बलराम दोनों तुरंत पहुंच गए वरुण देव के पास। जैसे वरुण देव को मालूम पड़ा कि कृष्ण और बलराम आए हैं तो उनको अच्छी तरह से स्वागत किया, स्वागत करके बोले कि किसी कारणवश आप इधर आए तो मैं ये जो पूरा सारे जितने भी जलाशयों का जो नियंता के रूप में हूं, लेकिन इससे मेरा जीवन का कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप मेरे पास आए तो आपका दर्शन हुआ, इससे मैं समझता हूं कि मेरा जीवन का सिद्धि प्राप्त हुआ। वरुण देव ने कहा कि मेरे अनुचरों ने, मेरे सर्वेंट्स ने कुछ गलती किया कि आपके पिताजी को वो लोगों ने अरेस्ट किया और मेरे पास लेके आए, असलियत में ये उनको नहीं करना चाहिए था करके वो अपने पिताजी को वापस दे दिए, तो बहुत क्षमा मांगते हुए, तो सो आई बेग पार्डन, इस प्रकार मैं एक आपका दास हूं करके वो वापस कर दिए। तो ये जो कृष्ण की पार्षद, उनको उनके अंदर दोष देखना ये एक प्रकार का असुर है, क्योंकि वरुण के जो अनुचर थे वो ये नहीं जानते थे कि नंद महाराज कृष्ण के पार्षद हैं, और पार्षदों को हम उनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। ये बक्तिनो ठाकुर लिखते हैं कि ये जो इस प्रकार की जो भावना है वो सूचित करता है, ब्लिस ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन बी एनहेंस्ड बाय इंडल्जिंग इन वाइन एंड वुमन, वाइन एंड इंटॉक्सिकेशन। ये सोचना कि मैं कुछ नशा करूंगा, भांग पीऊंगा और मजरा पीऊंगा, तो इस प्रकार करने से मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे तो ऐसा लगता है कि ये तो कौन करता होगा, लेकिन ये बहुत प्रचलित है वृंदावन में, बहुत प्रचलित है। कुछ ऐसे ऐसे आश्रम हैं जहां रात भर भांग पीते, रात भर नशा करते हुए कीर्तन करते हैं, ये कि नहीं, बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं। वो इस्कान की भक्तों की यात्रा के झुंड से मिलकर आप सब जाते हैं, इसलिए आप उनसे बच के रहते हैं, लेकिन अगर एक महीना अगर वृंदावन में रुकेंगे तो आश्रमों का सब एड्रेस पता लग जाएगा, और निमंत्रण भी देता है, कीर्तन है, चलिए हमारे आश्रम में कीर्तन है, रात भर कीर्तन। उधर जाके देखेंगे पूरा रात भर नशा करते रहते हैं और गांजा पीते हैं और कीर्तन भी होता है, और वो कीर्तन भी बहुत मधुर होता है। वो सोचते हैं कि नशा करने के द्वारा हमारा रात भर कीर्तन होता है, उससे भक्ति का आनंद और बढ़ जाता है। ये जो अनर्थ है, ये जो इस प्रकार की भावना है, ये भक्तों के हृदय से निकालना चाहिए, इससे बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत वेरी डेंजरस। और वो देखेंगे किस प्रकार वो कीर्तन करते हो, आप हैरान हो जाए, हम भी नहीं कर पाएंगे उस प्रकार का कीर्तन, वेरी दे डू होल नाइट कीर्तन, अभी जोर जोर से भाव से इतना म्यूजिकली करते हैं। और एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग, कम से कम 100-150 लोग बैठ के करेंगे, और सभी लोग पूरा धुआं धुआं भरा रहेगा गांजा का। तो ऐसे कुछ आश्रम है, उनको तथाकथित आश्रम है, उनसे बच के रहना चाहिए। तो ये नशा करने से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिव्य स्तर में पहुंच गया हूं, इसलिए कभी कभी हमारी संस्था के जो कुछ जानते नहीं है वो सोचते हैं कि वो जो कोई पिक्चर निकाला था वो सम्बड़ी कोई दम मारा दम ऐसा कुछ वो सोचते हैं कि वो पिक्चर के में जो कहता था यही हरे कृष्ण वाले हैं पूरा हरे कृष्ण संस्था में मंदिर में जाएंगे ऐसे दिखाई पड़ेंगे। उनको मालूम नहीं हम चाय भी नहीं पीते कुछ लोगों ने कहा कि जब शुरुआत में मैं ज्वाइन किया था मेरे पिताजी को ऐसा कहे थे तो बाद में उनका लेटर आया था कि आपकी संस्था में ऐसा होता है क्या, तो मैंने लिखा हम चाय भी नहीं पीते तब वो वापस लेटर नहीं आया तो खैर ये इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि द पास्ट टाइम रिप्रेजेंट मिसकंसेप्शन दैट ब्लिस ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन बी एनहेंस्ड By indulging in wine and other intoxicants. आध्यात्मिक कार्यकलापों में आनंद प्राप्त करने के लिए हमको कुछ और भौतिक चीजों का सहारा लेना नहीं पड़ता है। So we should not confuse that by accepting some material enjoyment, my devotional ecstasy is increasing. No. भगवान का भक्ति में जो आनंद जो है वो भगवान ही देते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो हमको भक्ति के कार्यक्रमों को करते रहना होगा, क्योंकि वो दवाई है। जैसे संडे दोपहर के क्लास में हमने लिया निवृत्त तर्श उपगीयमान बहुषदा छोत्र मनोविरामात। कभी कृष्ण कीर्तन, ये कीर्तन कृष्ण कथा दवाई के रूप में काम करता है, और शुद्ध होने के बाद, मुक्त होने के बाद वही मनोविरामात वो आनंद भी प्रदान करता है। तो या दवाई हो या आनंद हो, वो दोनों अच्छा ही है। अगर कड़वा लग रहा है भजन करना तो ये समझना चाहिए कि दवाई है, दवाई तो कड़वा रहेगा ही, और अच्छा लग रहा है इसका मतलब है कि हमको थोड़ा मुक्ति प्राप्त हुआ। ये सोचना कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ भौतिक सहारा लूंगा तो मुझे अच्छा होगा, भौतिक चीजों का सहारा लूंगा, जैसे नशा करना, नशा करने से मैं और दिव्य आनंद को प्राप्त करूंगा। We should know the reality. We should live in reality, not in illusion. तो भक्ति जो है हमको वास्तविकता की ओर और लेके आता है, लेकिन और मैं इल्यूजन में जाऊंगा और नशा करूंगा तो सत्य से दूर जाऊंगा ताकि मैं भक्ति का आस्वादन कर सकूं, ये गलत बात है। तो ये नंद महाराज वरुण देव के द्वारा चुराया गया ये लीला है। उसके बाद एक दिन नंद महाराज और उनके जितने भी अनुचर थे,
दैट
इज नॉट अनर्थ, दैट वॉज देयर अपराध, दैट वॉज देयर ऑफेंस, दैट वॉज देयर ऑफेंस, बट दिस रिप्रेजेंट स्टीलिंग Anand Maharaj, the pastime represents misconception. That is the misconception. But within the pastime, in the description in the Bhagavatam, what was their offense? The offense was that they were finding faults with they were not understanding that unko malum nahi pad raha tha ki ye Nand Maharaj ke Nand Maharaj Krishna ke parshad hai aur unka wo divya star mein hai aur ye bhi hai ki jo Vrindavan dham ke jo jo kund hote hai Yamuna hai ye jo वैदिक स्मृतियों का जो नियम है उधर लागू नहीं होता है, उधर लागू नहीं होता है। इसके बीच में बहुत सारे लोगों का मतभेद है, अलग अलग प्रकार के विचार है, लेकिन फिर भी वृंदावन धाम के जो कृष्ण के एसोसिएट्स है, क्योंकि वो वैदिक चीजों से परे दिव्य है। जैसे आप कोई और धाम में जाएंगे और कोई क्षेत्र में जाएंगे, उधर के जो कुंड का जो कुंडों का हो या नदियों का जो नियम कानून है, वृंदावन का लागू नहीं होता है, क्योंकि वृंदावन में जो भक्ति हो रहा है, जो ये चीजें हैं, वो राग और प्रेम के स्तर में है और उधर विधि नियम लागू नहीं होता है। तो आप पालन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सूर्यास्त के बाद जलाशय को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो आपको लागू होता है क्योंकि आप विधि पालन कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन वासी, ब्रजवासी या जो राग भक्ति के मार्ग को स्वीकार किए, उनको ये लागू नहीं होता है। दे कैन जंप इन राधा कुंड, दे कैन टेक बाथ इन राधा कुंड, दे कैन टेक बाथ इन यमुना एनी टाइम, यमुना ही यमुना। वो दिन और रात उधर अधाम आ जाती, दिन और रात उधर लागू नहीं होता उनको। दिस नो क्वेश्चन, बिकॉज नियमित स्मरणेन कालः, because that is only just Bhagavad Vidhi existing there. Nimita smarana ina kala. It doesn't. But if you are following, you follow. There is no wrong. There is nothing harm. अगर आप कोई पालन चीज को पालन कर रहे हैं तो पालन कर सकते हो। लेकिन जो पालन नहीं कर रहा है, राग को प्राप्त कर रहा है, राग को मार्ग को स्वीकार किया है, तो आप उनके ऊपर शासन करना कि नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, then वृंदावन it doesn't apply. वृंदावन में ये करना चाहिए, जाना चाहिए, सब कुछ टेढ़ा है, गलियां टेढ़ा है, उधर के ब्रजवासी भी टेढ़े, सब एवरीथिंग इज क्रूकेड देयर, नथिंग इज स्ट्रेट इन वृंदावन, नथिंग इज स्ट्रेट, डोंट ट्राई टू स्ट्रेट इन वृंदावन, दैट इज अगेंस्ट कृष्णास विल, यू कैन डू इट एवरीवेयर, बाकी सब कुछ कर सकते हो, कर जाएगा। वृंदावन इज अ ट्रांसेंडेंटल एंड ब्रज भूमि है। तो नंद महाराज एक दिन उनके सारे जितने पार्षद है और उनके जितने भी अनुचर थे, उन सबको लेके सरस्वती नदी के तट पे ऊपर गए थे कुछ कार्य से। तो उधर सोए हुए थे, तो थोड़ा सा पानी पीकर रात को आराम कर रहे थे। उस समय एक बड़ा सा सांप आया, ये बड़ा सा सांप आके नंद महाराज को खाने लगा। वो अंदर तब नंद महाराज को बहुत दुख हुआ और उस परिस्थिति में कृष्ण कृष्ण करके चिल्लाने लगे, कृष्ण आके बचाओ, कृष्ण आके बचाओ। क्योंकि उस समय तक जानना ये मालूम करना चाहिए, नंद महाराज को मालूम पड़ गया था कि कृष्ण भी बड़े हो गए और बहुत सारे असुरों को वध किया। तो व्रजवासी के भाव में उन्होंने किया कि और कोई तो रक्षा करने वाला है नहीं, और मुझे कृष्ण ही रक्षा कर सकता है करके कृष्ण कृष्ण करके पुकारने लगे, सन कृष्ण प्लीज कम एंड सेव मी फ्रॉम दिस डेंजर। तो समय कृष्ण आए और बहुत सारे जितने भी उनके नंद महाराज के बाकी सब अनुचर थे, सांप को मारने के लिए बहुत गए थे, डंडे लेके मार रहे थे, लेकिन कुछ सांप कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, नंद महाराज को और अंदर मुंह के अंदर ले रहा था। तो समय कृष्ण आए तो तुरंत अपने चरण कमल को ये स्पर्श किए, जैसे स्पर्श करते ही वो जा सांप जो है एक गंधर्व का रूप धारण किया। एक गंधर्व अस्तित्व में एक ये सांप जो है पहले एक गंधर्व था, तो कृष्ण का चरण के स्पर्श होते ही वो ना स्वरूप धारण के लिए, उनके चेहरे से बहुत सुंदर सा एफलजेंस आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। तब वो विद्याधर ने कहा, माय डियर लॉर्ड, ही सेड, इन माय प्रीवियस लाइफ में एक बड़ा विद्याधर था, मैं मेरा नाम विद्याधर था और मेरा सुंदरता सारा दुनिया में विख्यात था, तो एक दिन विद्याधर कहते हैं, ये जो गंधर्व जिनका नाम विद्याधर है, कृष्ण कहते हैं मैं इतना सुंदर था कि मैं इतना अहंकार हो गया था सुंदरता की वजह से, मैं सारे दुनिया में घूमते घूमते एक जगह में अंगीर ऋषि के पास पहुंचा। तो अंगीर ऋषि जो है वो दिखने में सुंदर नहीं थे, तो उनको देख के मुझे मेरे अंदर अहंकार आया, तो और उनको निंदा करने लगा, देखो क्या शरीर है तुम्हारा, गंदा है, इस प्रकार बदसूरत है, बंदर जैसे हो, इस प्रकार बोलने लगा। तो मुझे उस पाप का परिणाम की वजह से मुझे इस प्रकार सांप का शरीर मिला जो दिखने में बहुत गंदा रहता है, करके विद्याधर ने कहा। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, दिस पास टाइम रिप्रेजेंट्स हाउ कृष्णा सेव्स द ट्रूथ ऑफ डिवोशनल सर्विस फ्रॉम बीइंग स्वैलोड बाय मायावादीज एंड अदर एथिस्ट। इट इलस्ट्रेट्स हाउ डिवोटीज मस्ट अवॉइड द कंपनी ऑफ सच स्नेक लाइक पीपल। इस लीला के द्वारा कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भक्तों को या शुद्ध भक्ति के नियमों को वो मायावाद और नास्तिकता के सिद्धांतों के द्वारा ग्रहण करने से बचाते हैं। कभी कभी शुद्ध भक्ति का सिद्धांत को अगर नहीं जानेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मायावाद और नास्तिकता भी सही है, ऐसा लग सकता है। शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को अच्छी तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में मायावाद और नास्तिकता तो आएगा ही, क्योंकि मायावाद और नास्तिकता पहले से हृदय में बसा हुआ है। तो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो क्या हृदय में क्या रहेगा, मायावादी रहेगा, नास्तिकता रहेगा, तो वो भक्षण कर लेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे अलस। सिद्धांत के डर से अरे कौन पढ़ेगा, हम तो भजन कर रहे हैं, हरिनाम तो करना है, ये सब चीजें किताबिता पढ़ेगा, किताबिता पढ़ने से हमको क्या करना है, हरिनाम तो करना है, यही तो एंड रिजल्ट है। मैं तो कर रहा हूं हरिनाम कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े खतरनाक सांप जैसे है, एनवीएस। मायावाद और नास्तिकता अस्तित्व में नास्तिक ही सिद्धांत ही नहीं बल्कि वो कृष्ण से ईर्ष्या कराने वाली सिद्धांत है, और ये दो, तो इसलिए हमको इनसे ही बच के रहना चाहिए। कृष्ण भक्त को अगर सिंसियर है तो इन सिद्धांतों से बचने का जरूर मदद करेंगे। उसके बाद और एक असुर का वर्णन आता है, वो है शंकासुर। शंकासुर कृष्ण और बलराम बहुत शक्तिशाली, बहुत सारे शक्तियों को प्रकाशित कर रहे थे। एक दिन वृंदावन के जंगलों में अंदर तक गए और उधर बहुत सारे जितने भी उनके गोपियां हैं उनके साथ रमण कर रहे थे कृष्ण और बलराम। उधर एक असुर, शंकासुर करके असुर था, उनके पास बहुत धन था, और धनी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि दुनिया के सारे स्त्रियां मेरा है और मैं उनके साथ रमण कर सकता हूं। तो ये शंकासुर आके देखा कृष्ण और बलराम इतने सारे गोपियों के साथ वो रमण कर रहे थे, तो उनको देख के रहा नहीं गया, उन्होंने तो सोचा ये गोपियां मेरी है, क्योंकि मेरे पास धन है, इतना शक्तिशाली हूं, ये तो ग्वाल बाल है, इनके साथ घूमती है, मेरे साथ घूमना चाहिए। तो शंकासुर ने क्या किया, उधर और यहां कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ रमन कर रहे थे, उधर जाके सारे गोपियों को इकट्ठा किया अपनी शक्ति के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा इकट्ठा कर बोला चलो मेरे साथ चलो। वो कृष्ण और बलराम से दूर लेके जा रहे थे गोपियों के साथ रमन करने के लिए। तब कृष्ण और बलराम को जोर जोर से पुकारने लगी गोपियां, कृष्ण बलराम मुझे पुकारो। तब कृष्ण और बलराम आए, जैसे आए तो ये शंकासुर को बहुत डर लगा, तो वो तो भागने लगे। तब कृष्ण ने क्या किया, सारे जितने भी गोपियों को बलराम के संरक्षण में दिए और कृष्ण शंकासुर के पीछे भागे, क्योंकि ये उनके सर के ऊपर, शंकासुर के सर के ऊपर एक शंख के आकार में एक सुंदर सा मणि था, तो कृष्ण चाहते थे कि वो मणि को मैं प्राप्त करूं। उन्होंने क्या किया, जाके शंकासुर को वध किया और उनके ऊपर ऐसा पकड़ के उनको मुक्का मार के हुए सर के ऊपर उनको वध किया। वध करने का उनके जो सर के ऊपर जो मणि था वो मणि निकाल के बलराम को उन्होंने भेंट किया, ही गिफ्टेड दिस वैल्यूबल ज्वेल टू बलराम। ये कृष्णा बुक में इस प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं। लेकिन ये शंकासुर जो है ये कौन से अनर्थ को सूचित करता है? द किलिंग ऑफ द डेमन रिप्रेजेंट्स कृष्णास किलिंग द डिजायर फॉर नेम एंड फेम एंड द एसोसिएशन ऑफ ऑपोजिट सेक्स, डिजायर फॉर एसोसिएशन। तो इस बात को पहले भी हमने चर्चा किया कि किस प्रकार सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति क्या है, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, मान सम्मान की प्राप्त करने की इच्छा और स्त्रियों के प्रति संग करने की इच्छा, इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया। वो है कौन से असुर के बारे में चर्चा किया? वी डिस्कसिंग वन प्रलंबासुर। ये प्रलंबासुर को भगवान बलराम जी वध करते हैं। इधर लिखा गया कि कृष्णा स्किलिंग द डिजायर फॉर नेम एंड फेम इन एसोसिएशन विद ऑपोजिट सेक्स, ये शंकासुर का स्टोरी है। और अरिष्टासुर अगला जो डेमन है, अगला जो असुर है जिनको वध करते हुए अरिष्टासुर। अरिष्टासुर एक बड़ा बुल, सांड बोलते हैं उसको, बुल को हिंदी में सांड बोलते ना, हाँ सांड के रूप में आए। इनकी कहानी बहुत सुंदर है कि किस प्रकार वो सांड बने। गर्ग संहिता में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण थे, वर्तनतु करके एक ब्राह्मण था, ये बृहस्पति का शिष्य था। तो इन्हें क्या किया, एक दिन अहंकार वश वो गुरु के सामने बैठे, गुरु के सामने बैठ के उनका जो पैर है वो गुरु को दिखाते हुए बैठे ऐसा। तो आप देखा होगा, देखे होंगे सांड भी ऐसे ही बैठता है, पैर को आगे करके बैठता है। तो बृहस्पति ने देखा, तुम मेरा इतना अपराध कर रहे हो, तुम्हारा पैर को मुझे दिखाते हुए बैठे हो, आगे करके बैठे हो, मेरे सामने बैठ के मुझे मेरे ऊपर मेरे ओर आप पैर करके बैठे हो, ये सांड ऐसा बैठता है तो इससे तुम सांड बन जाना करके शाप दिए। आप देखे कि नहीं सांड कैसे बैठते, पैर को ऐसे आगे करके एकदम बैठते, इट कीप्स दिस लेग्स फॉरवर्ड ऐसा। तो इसलिए ये बुल बन जाना है। ऐसा लिखते हैं कि ऐसा बोला गया कि वो सांड बना, वो कहां बना, ईस्ट बंगाल में जाके सांड बना, वो भी बांग्लादेश का सांड है। He then took birth as a bull in East Bengal and by the association of demonic bulls he also became a demon. Prayaspati ka shishya devata hai lekin is prakar unka asur banne ka yo hua. Aur aage iska inki kahani is prakar hai. So Kansi ke kehne par Arishtasur wo pravesh kiye unko Krishna ko vadh karne ke liye, Krishna Balram ko marne ke liye. To samay itna भयंकर सा उनका शरीर था, इतना भारी उनका शरीर था कि जब वो चलते थे पूरा धरती कांपने लगा। वे उनकी केवल चलने की आवाज से, उनकी ओंकार से, उनके उपस्थिति से इतना भयंकर सा स्थिति उत्पन्न हो गया था। जितने वृंदावन में जितने भी गायें थी, वो गर्भ धारण किए गायें थी और गर्भवती गोपियां थी, तो उन सबका गर्भपात हो गया ऐसा बोला जाता है। और इतना भयंकर सा सिचुएशन था, सभी लोग जितने ब्रजवासी है सभी लोग कृष्ण कृष्ण करके पुकारने लगे और रोने लगे, कृष्ण आके हमको बचाओ। तब अरिष्टासुर के सामने आए कृष्ण और बोलने लगे, तुम इतना नीच व्यक्ति हो कि सारे वृंदावन जहां प्रेम से भरा हुआ वृंदावन है और आप उधर एक उत्पात मचा रहे हो, ब्रजवासियों के हृदय में डर उत्पन्न करा रहे हो, तो अगर मुझे ही मुझे मारना है तो मेरे से युद्ध करो, तो ब्रजवासियों के क्या दोष है, तो ब्रजवासियों को परेशान मत करो, उनको तंग मत करो। तो कृष्ण अरिष्टासुर को बोलने लगे, तो अरिष्टासुर ये बातें सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया, वो आके भागते हुए कृष्ण को मारने के लिए आए। तब कृष्ण अपने मित्र की भुजाओं के ऊपर हाथ रखे थे और अरिष्टासुर जोर जोर से आके जोर जोर से भागते हुए कृष्ण को मारने के लिए आए। तब कृष्ण ने क्या किया, अपने जो सांड आता है तो अपनी हॉर्न्स को आगे करके आता है, उनका जो सिंह होता है, सिंह से कृष्ण को वध करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, वो सिंह को पकड़ लिए, सिंह को पकड़ के घुमा के उनको अरिष्टासुर को फेंक दिए। जैसे अरिष्टासुर फेंके, उनको बहुत थके हुए, बहुत उनको दर्द हो रहा था, बहुत थके हुए अवस्था में था, उनको बहुत दर्द भी हो रहा था, फिर भी लेकिन उठ के फिर वापस आए कृष्ण को मारने के लिए। वापस इतना गुस्से में आए, कृष्ण ने क्या किया, उनके जो हॉर्न्स है, उनके जो सिंह है, उनको पकड़ के उनको तोड़ दिए और ऐसा उन शरीर को लात मारे कि जिस प्रकार एक धोबी कपड़े को निचोड़ के निचोड़ता है, उसी प्रकार कृष्ण ने अरिष्ठासुर को लात मार के उनको निचोड़ के जमीन के ऊपर फेंक दिया। जमीन के ऊपर लोटपोट करते हुए उनका आंखों से आंख बाहर निकल गए और मृत्यु का जगत में जगत को प्राप्त किया करके कृष्ण बुक में लिखा गया है। तो ये अरिष्ठासुर क्या सूचित करता है? अरिष्ठासुर रिप्रेजेंट द प्राइड ऑफ प्रूडेंट रिलीजनिस्ट हुज प्रैक्टिस हैव बीन कॉन्कॉक्टेड बाई चीटर्स। दिस इज ड्यू टू कंटेमिनेट कंडीशन दे शो रिस्पेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। कुछ ऐसे तथाकथित धार्मिक है जो केवल रिचुअल्स को पालन करते हैं, वो असल में भक्ति के नियम नहीं है, लेकिन अपने मनगढ़ंत नियम पालन करते हैं, मनगढ़ंत तरीके से तथाकथित धार्मिक का नियमों को पालन करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति के जब नियम कोई भक्त पालन करता है, वो लोग आके बोलते हैं कि ये क्या है भक्ति, ये क्या है जो हम कर रहे हैं, वो भक्ति है। ये सम चीटर्स हैव कॉन्कॉक्टेड सम प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। When they see devotee performing pure devotional service, they criticize. ये भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे हमारे जैसे नए नए हम भक्ति करना शुरू करते हैं, लोग आके बोलते हैं ये क्या नाचना कूदना थोड़ी ना भक्ति होता है, हवन करो यज्ञ करो। तो इस प्रकार हम सुनते बोलता है और वे ये थोड़ी ना इस प्रकार थोड़ी ना पूजा किया जाता है, पूजा हमसे सीखो। खास करके आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो बहुत ऐसे सुनने को मिलेगा, उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून, तथागत नियम कानून, सेल्फ कंसीव्ड नियम कानून है, उन सब के प्रति उनका ज्यादा आसक्ति रहता है। वो जब शुद्ध भक्ति करने लग जाता है, वो शुद्ध भक्ति के अंदर वो क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति के अंदर दोष दिखाने की प्रवृत्ति है। ये अरिष्ठासुर इस प्रकार के अनर्थ को सूचित करते हैं और कृष्ण जो है इस अनर्थ को इस ऐसे व्यक्तियों को वध कर देते हैं। केशी अगला असुर है जिनको भगवान वध करते हैं। केशी स्किल्ड बाय कृष्ण। ये केशी कहा गया कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि केशी जो है सुप्रवक्षा, वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ गंधर्व हु बिकेम प्रलंबा एंड बकासुर। तो ये सुप्रवक्ष नामक एक असुर था ये केशी, और केशी सूचित करता है ये भावना कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैं एक बड़ा गुरु हूं। तो ये जो भावना है इस प्रकार की अहंकार है, नित्य अहंकार है, मैं बड़ा भक्त हूं, ये अहंकार को केशी राक्षस सूचित करता है। कंस ने केशी को भेजा था, उन्होंने सोचा कि बस अभी देखता हूं बहुत सारे असुर गए लेकिन मर गए, तो केशी तुम कुछ करके आओ। तो केशी ने बोला आप चिंता मत करो मैं जाता हूं। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा हुआ, बलराम को ऐसा लगा देखो सभी लोग कृष्ण के पीछे भाग रहे, ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है उनकी जो बांसुरी है उससे सारा जगत मोहित है और उनके जो मोरपंख है उससे भी बहुत सारे लोग मोहित है। तो बलराम ने कहा एक दिन, ओ कृष्ण मुझे जरा आज के लिए तुम अपना बांसुरी दे दो और आज के लिए तुम्हारा अपना मोरपंख दे दो। तो कृष्ण बोला ठीक है लेके जाओ। तो बलराम जो है बांसुरी लेके मोरपंख लेके पूरा ब्रज में घूम रहे थे, वहां अभी मैं मुझे भी सब लोग मेरे ऊपर भी आप आकर्षित होंगे, मैं भी कृष्ण बन गया हूं। तो उसी समय कंस ने केशी को भेजा था, तो केशी ने पूछा कौन है ये कृष्ण? तो कंस ने बोला कृष्ण को पहचानना है तो उनके हाथ में बांसुरी रहेगा और मोरपंख रहेगा। तो केशी आया राक्षस आके ढूंढ रहा था कहां है, अरे हाँ मिल गया, बांसुरी है मोरपंख है कृष्ण। और जैसे उनको देखा केशी वो भागते भागते आया और उनको बलराम जी को मारा। तो बलराम जी नीचे गिर गए। तो बाद में चारे क्या हो रहा है, मुझे तो अभी तक तो ऐसा कोई आके अटैक नहीं किया था। तो सोचने लगे हाँ ये जरूर कृष्ण को ढूंढने के लिए आया है और मैं आज बांसुरी और मोर को धारण किया हूँ इसलिए आगे आज भैरव पर अटैक किया गया। वो तुरंत भागे और बोले कृष्ण को तुल दो तुम्हारा बांसुरी तुम्हारा मोर को मुझे नहीं चाहिए। तब कृष्ण इसको लेके आए। जब आप आए कैसी राक्षस फिर से कृष्ण को अटैक करने के लिए आए तो कृष्ण से छाती लगा के आगे करके खड़े हो। वो कैसी आके उनको जोर से लात मारने के लिए प्रयास करा तो उनको कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अगली बार फिर से वापस आए तो कृष्ण ने क्या किया केसी के जो दोनों पैर पकड़ के उनको घुमा के हुए फेंक दिया। फिर से केसी और शक्तिशाली और जोर से गुस्सा करते हुए आवाज निकालते हुए अपना मुंह खोलते हुए भागते भागते आए कृष्ण को मारने के लिए। तब कृष्ण ने क्या किया अपना जो लेफ्ट हैंड है वो मुंह के अंदर घुसा दिए और कैसी उसी समय उनका बहुत सारा शक्ति नाश हो गया था मरने की अवस्था तक आ गया था। तो कृष्ण ने क्या क्या मुंह कैसी राक्षस के वो घोड़े के अंदर मुंह में हाथ घुसा के लेफ्ट हैंड घुसा के वो हाथ को बढ़ाने लगे विस्तार करने लगे। ऐसा हो गया कि कैसी राक्षस का पूरा जो गला है वो चोक हो गया वो दब गया वो सांस भी अंदर नहीं ले पा रहे थे। तो ये जिस प्रकार अघासुर का सूरा शरीर के अंदर प्रवेश करके अघासुर को भी इस प्रकार धम घुटा दिए थे उसी प्रकार केसी राक्षस को भी ऐसा हुआ और उनका जो आत्मा है केसी राक्षस का